नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 133वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रचारक रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पूर्व बर्धमान के जमालपुर में कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता और 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी हुगली में कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रूपये दिए जाएंगे।
अगर बीजेपी की सरकार आती है 5,00,000 पदों पर सीधे हम भर्ती करेंगे, कानून और व्यवस्था को मजबूत करेंगे, किसानों को उचित मूल्य देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे और साथ ही साथ सड़कें अच्छी बनेगी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी के साथ डेवलपमेंट होगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर पाडा में कहा कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में 32 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए संघर्ष किया। पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी ने बशीरहाट में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिरामपुर, मेतिया बुर्ज और शाहिद मीनार में बैठकों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान प्रतिशत में और वृद्धि हुई है। समीक्षा के बाद राज्य में कुल मतदान 93.19% रहा। निर्वाचन आयोग ने इसे आजादी के बाद राज्य में सर्वाधिक मतदान बताया। कूचबिहार में सबसे अधिक 96.2% और कलिम्पोंग में सबसे कम 83.04% मतदान हुआ। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। प्रमुख अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री लाहिड़ी श्री सुमन के बेरी का स्थान लेंगे। सरकार ने श्री राजीव गौबा, प्रोफेसर केवी राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, डॉक्टर एम श्रीनिवास और प्रोफेसर अभय करंदकर को आयोग पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीति आयोग भारत की नीति निर्माण संरचना में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। श्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भेंट की। श्री मोदी ने श्री के प्रयासों से देश में नीति निर्माण को नई ऊर्जा मिलने का विश्वास व्यक्त किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार अगले 4 वर्ष में शहरी चुनौती कोष के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में कल आवासन और शहरी विकास लिमिटेड हुडको के 56वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारें भी इसके लिए अलग से 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी चुनौती कोष को हाल में स्वीकृति मिली थी। सरकार ने पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। देश भर में ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग करीब 99% तक हो गई है और ओटीपी आधारित डिलीवरी 94.5% से अधिक हो गई है। मार्च 2026 से अब तक 5,36,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ओमान दौरे के बाद इस्लामाबाद जा सकते हैं। इससे अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता की संभावना बढ़ गई है। शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुंचे श्री अराघची ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इससे पहले श्री अराघची कल अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को अपनी मांगों की सूची साझा करने के बाद इस्लामाबाद से रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक व्यवहारिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के वार्ताकार स्टीव विचकॉफ और जेरेड कुशनर अब ईरान के साथ वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। जोहानिसबर्ग में भारत ने चौथे महिला T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 14 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 9 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। दीप्ति शर्मा को हरफनमौला खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।